नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर ईंधन आपूर्ति और मुद्रास्फीति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। खाड़ी देशों पर बढ़ते खतरे के बीच पश्चिम एशिया में सुरक्षा चिंता बढ़ी, तनाव कम करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी। भारत ने अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की रक्षा में पाकिस्तान के दयनीय रिकॉर्ड को उजागर किया। बालेंद्र शाह ने नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और भारतीय तीरंदाजों ने एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार की प्राथमिकताएं आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उद्योग तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। श्री मोदी ने ये बात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। इस बैठक का उद्देश्य पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों से उत्पन्न हो रही स्थिति और भारत पर इसके संभावित प्रभाव के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा करना था। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्थिति लगातार बदल रही है, जिसके लिए निरंतर निगरानी और परिस्थितियों के अनुसार रणनीतियां बनाने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि देश को इस तरह की वैश्विक बाधाओं से निपटने का पहले से अनुभव है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान दिए गए सामूहिक जवाब को याद किया, जब केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम किया था ताकि आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार और रोजमर्रा के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान परिस्थितियों से निपटने में सहयोग और समन्वय की यही भावना भारत की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि इस चुनौती का सामना करना एक साझा जिम्मेदारी है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करते हुए राष्ट्र इस स्थिति से सफलतापूर्वक पार कर लेगा। सरकार ने डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन ATF पर निर्यात शुल्क लगाया है और पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया है। इसके पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और उपभोक्ताओं पर पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों का असर नहीं पड़ेगा। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितता और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन की घरेलू उपलब्धता को प्राथमिकता देना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत के पास वर्तमान में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। यह अगले 2 महीनों के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और LPG तथा PNG की उपलब्धता संतोषजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी पूरी या उससे अधिक क्षमता पर काम कर रही है।
हमारी रिफाइनरीज 100% या उससे भी ज्यादा कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ LPG हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 40%। LPG वी हैव अ ह्यूज इंपोर्ट डिपेंडेंसी और इसका 90% जो आ रहा था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आ रहा था, इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा।
ईरान के हमले तेज करने के साथ पश्चिम एशिया में संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों पर खतरा बढ़ गया है। संयुक्त अरब अमीरात में वायु रक्षा प्रणालियों ने आज सुबह ईरान की 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और 9 ड्रोनों को रोका। इसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुवैत पर भी सीधा हमला हुआ है। सऊदी अरब में रक्षा प्रणालियों ने पूर्वी प्रांत के ऊपर 4 ड्रोनों को रोका। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलादिमीर जेलेंस्की सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। इस बीच तनाव कम करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी हैं। एक रिपोर्ट।
खाड़ी देशों के अधिकारियों का कहना है कि बढ़ता सुरक्षा खतरा केवल सैन्य तनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक विकास योजनाओं को लेकर भी गंभीर चिंताओं से जुड़ा हुआ है। आशंका है कि बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों पर हमले निवेशकों के भरोसे को कमजोर कर सकते हैं और खाड़ी देशों में चल रही विजन 2030 जैसी आर्थिक विविधीकरण योजना को प्रभावित कर सकते हैं। ऊर्जा सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा प्रतिष्ठान अब भी खतरे में हैं। खाड़ी सहयोग परिषद के भीतर ओमान कूटनीतिक समाधान की वकालत कर रहा है और 15 सूत्री शांति प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
अमरीका स्थित मानवाधिकार समूह ने काबुल में पुनर्वास केंद्र पर पाकिस्तान के हाल के हमले को गैर कानूनी बताया है। मानवाधिकार समूह ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा को संकट में डालने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाली यह घटना युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकती है। 16 मार्च को पाकिस्तान ने काबुल में 2000 बिस्तरों के उपचार केंद्र पर हमला किया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और अनेक घायल हुए थे। मानवाधिकार समूह ने पाकिस्तानी अधिकारियों को इस घटना की तुरंत निष्पक्ष जांच कराने को कहा है, ताकि दोषी लोगों को दंडित किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले में इस अस्पताल के एक ब्लॉक के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने की खबर दी है, जिसमें मादक पदार्थ की लत वाले किशोरों का उपचार चल रहा था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP के संसदीय दल के नेता बालेंद्र शाह ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अंतर्गत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 35 वर्षीय बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल ही में संपन्न संसदीय चुनाव में लगभग 2/3 बहुमत से जीत हासिल करने वाली RSP ने उन्हें अपना संसदीय दल का नेता चुना। वे नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री बने हैं। श्री बालेंद्र शाह पिछले साल सितंबर में पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद शपथ लेने वाले पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि अभी हमारी ईंधन आपूर्ति स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आने वाले महीनों में इस स्थिति में कठिनाई आएगी। संसद भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री अल्बनीज ने कहा कि सरकार एक मजबूत योजना बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को तेल की आपूर्ति करने वाले देश मलेशिया और व्यापक आसियान क्षेत्र के साथ अपने सकारात्मक संबंधों का उल्लेख किया। स्पेन की संसद ने पश्चिम एशिया संघर्ष के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए 5 अरब 80 करोड़ डॉलर के एक पैकेज को मंजूरी दी है। इसमें ईंधन, गैस और बिजली पर करों में कटौती का प्रावधान है। ऊर्जा संसाधनों पर वैल्यू एडेड टैक्स 21% से घटाकर 10% कर दिया गया है। वित्त मंत्री कार्लेस कुएर्पो ने कहा कि लगभग 2 करोड़ परिवार बिजली बिलों में कटौती कर सकेंगे। बैंकॉक में तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता के पहले चरण में भारत ने 10 पदक जीत लिए हैं। भारत ने कंपाउंड मिक्स टीम ने स्वर्ण पदक और पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक अपने नाम किया। भारत ने 2 स्वर्ण 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर पिछले संस्करण के अपने कुल पदकों की संख्या में सुधार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर, ईंधन आपूर्ति और मुद्रास्फीति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। खाड़ी देशों पर बढ़ते खतरे के बीच पश्चिम एशिया में सुरक्षा चिंता बढ़ी, तनाव कम करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी। भारत ने अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की रक्षा में पाकिस्तान के दयनीय रिकॉर्ड को उजागर किया। बालेंद्र शाह ने नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और भारतीय तीरंदाजों ने एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।